Dejo. Nitaygar Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jai Prabhu Pada, Prabhu Pada, Prabhu Pada, Jai Prabhu Pada. बाल परमहंस परिग्रह विकटारी अशोकसत्री श्रीमधे देवांगे अभयतरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की नित्य लीला प्रवेश इस्कॉन फाउंडराचार्य श्री होलवर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय नामचार्य हरिदास ठाकुर की जय प्रेम कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय श्री श्री गंगदाई भगवान की जय श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय समवेत भक्तवृंद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय श्री पानीहति पीड़ग देवा महोत्सव की जय गौर प्रेमानंदे All glory to Sindhu Bodhi, all glory to Sindhu Bodhi, all glory to Sindhu Bodhi, all glory to Sri Guru and Gauranga. Hare Krishna. So, आज कुछ विशेष उत्सव है हमारे वैष्णव कैलेंडर में लिखा हुआ है आप लोगों में से कितने लोग जानते हैं कुछ विशेष उत्सव है हुँ? क्या है दधीचिवड़ा महोत्सव सबको पता होना चाहिए जितने लोग जाप करते हैं माला पर जाप करते हैं सबको पता होना चाहिए और बहुत ही पवित्र दिन है आज के दिन आप लोगों को दही चिवड़ा का प्रसाद भी सबको खिलाना चाहिए बनाए कि नहीं बनाए नहीं बनाए साल में एक दिन आता है हमारे मंदिर में वो एक आइटम ये भी है सवेरे 9 बजे जो प्रसाद होगा तो दही चिवड़ा का भी जो है वो भोग लगेगा है नहीं ठीक है अभी जरूरत नहीं है ठीक है अभी बैठो आप लोग प्रसाद सुनो अगले साल से फिर ध्यान रखना वैष्णव कैलेंडर देखना चाहिए और कुछ ऐसे त्यौहार होते हैं बड़े महत्वपूर्ण होते हैं इनके बारे में सुनना चाहिए जानना चाहिए कि चैतन्य चरितामृत का अंत लीला है अध्याय 6 है ये लीला विस्तार पूर्वक वर्णन है जिसको कि हम सुनेंगे और ये फिर आप लोगों के लिए हर साल का ये उत्सव होना चाहिए ठीक है ना तो मेरे पीछे बोलिए जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत अंत लीला अध्याय 6 अध्याय का नाम है श्री चैतन्य महाप्रभु से रघुनाथ दास गोस्वामी की जय तो ये अध्याय बहुत बड़ा है और कथा बहुत विस्तृत है तो आज की जो घटना है उससे संबंधित जो कथा है तो उसको हम सुनेंगे तो घटना इस प्रकार से है कि आप लोग जानते हैं कि 6 गोस्वामी हुए हैं वृंदावन के है ना बहुत ही प्रसिद्ध हैं जिनमें से एक हैं रघुनाथ दास गोस्वामी ठीक है ना तो ये जो है सत्यग्राम के जो जमींदार थे गोवर्धन मजुमदार उनके पुत्र थे उस समय रघुनाथ दास गोस्वामी के फिर बाद में हुए ना रघुनाथ दास छोटे से बालक थे और गोवर्धन मजुमदार और इनके बड़े भाई थे हिरण्य मजुमदार, दोनों भाई के जो है केवल एक ही पुत्र हुआ। हिरण्य मजुमदार की कोई संतान नहीं थी, गोवर्धन मजुमदार की केवल एक संतान थी, वो कौन थे? रघुनाथ दास। और संपत्ति कितनी थी? अपार संपत्ति, राजा की तरह, आप समझे, अपार संपत्ति और हजारों सेवक, है ना, मतलब राजा की तरह उनका जो है सब हाथ मार था। और अकेले संतान रघुनाथ दास। लेकिन ये जो रघुनाथ दास हैं तो बचपन से ही इनका जो मन है वो भगवान चैतन्य की लीला में लगता था, और कुछ भक्तों के मुख से, हरिदास ठाकुर के मुख से उन्होंने भगवान चैतन्य की लीलाएँ सुनी, और भगवान चैतन्य अभी भी लीला कर रहे हैं। अब इस समय भगवान चैतन्य कहाँ पर हैं? जगन्नाथपुरी में हैं। जगन्नाथपुरी में हैं तो भगवान है, साक्षात भगवान है, कृष्ण है, जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। आप सोचिए आपको कैसा लगे, इस समय ही मान लो मैं चैतन्य महाप्रभु लीला कर रहे हैं तो आपको कैसा लगेगा, है ना। और जगन्नाथपुरी में है कितनी इच्छा होगी कि उनके दर्शन करें, उनका संग करें, है ना। तो ये जो बालक था रघुनाथ दास, इसके अंदर बहुत इच्छा क्षमा करना, इसके अंदर बहुत इच्छा थी कि चैतन्य महाप्रभु का संग करूँ। लेकिन माता पिता जो है, माता पिता तुम्हें चाहेंगे, माता पिता को नहीं चाहेंगे कि लड़का हाथ से निकल जाए, है ना। हालांकि माता पिता जो है थे, भक्त थे, धार्मिक थे, और साधु संतों को अपने घर में ठहराते थे और उनकी सेवा करते थे, दान दक्षिणा खूब प्रचुर देते थे। लेकिन फिर भी इतना तो बड़ा मुश्किल है, अपार संपत्ति घर में एकमात्र बालक है, वो भी हाथ से चला जाए, है ना। तो ये रघुनाथ दास क्या करते थे, रोज जो है घर से भागते थे, रोज घर से भागते थे जगन्नाथपुरी के लिए, और रोज नौकर लोग जो है पकड़ करके लाते थे। तो ये करीब कभी रोज का ये नियम बन गया है, रघुनाथ दास जो है भाग रहा है ना। तो इन्होंने जो है क्या सोचा, माता पिता ने क्या सोचा कि अगर सुंदर स्त्री से विवाह कर दिया जाए तो ये जो है बड़ा बंधन होता है, तो इससे जो है शायद लड़का जो है मतलब घर में रहे। तो बड़ी सुंदर जो है कन्या से विवाह कर दिया, लेकिन कुछ फर्क नहीं, कोई चैतन्य महाप्रभु के लिए जो पागल हो उसके लिए स्त्री कैसे बांध सकती है, हैं? तो इनका तो जो है मतलब यही हिसाब। तब जो है माता कहती है इनसे कहती है, इनके पिता से गोवर्धन मजुमदार से कहती है, ये प्राय रोज कई काम बन गया है, रघुनाथ घर से भाग जाता है। तो रघुनाथ दास की माता ने अपने पति से कहा, गोवर्धन मजुमदार से, हमारा पुत्र पागल हो गया है, इसे रस्सी से बांध कर रखो। तो उनके पिता अत्यंत दुखी होकर अपनी पत्नी से बोले, सबसे बातुल भाई ये है राखा बांधिया, तारे पिता कहे तारे निर्विघ्न हैया। अब पिता ने क्या कहा, बहुत समझदार था, माता कहती है कि इसको रस्सी से बांध कर रखो कहीं भाग न जाए। तो पिता कहते हैं कि हमारे पुत्र के पास इंद्र जैसा ऐश्वर्य संपत्ति और उसकी पत्नी अप्सरा जैसी सुंदरी है, फिर भी उसके मन को अगर ये नहीं बांध सके तो कौन सी रस्सी से हम बांध सकते हैं, इससे मजबूत रस्सी और होती क्या है, धन और स्त्री, है ना, ये सब है इसके पास, अब हम कौन सी रस्सी से बांधे। तो पिता के लिए संभव नहीं है कि पुत्र का कर्म बदले, अगर पुत्र के कर्म ही ऐसे हैं कि वो चैतन्य महाप्रभु के संग में जाएगा तो पिता क्या कर सकता है। पिता ने कहा, माता से कहा, दाड़ी रे बंधन ने तारे राखी माँ के मते, जन्मदाता पिता नारे प्रारब्ध खंडाई के। पिता तो जन्म देने वाला होता है, ये प्रारब्ध का खंडन नहीं कर सकता। श्री चैतन्य महाप्रभु की उस पर कृपा है, चैतन्य के ऐसे पागल को घर में कौन रख सकता है। जो पागल हो गया चैतन्य महाप्रभु ये उसको घर में कैसे रख सकता है। चैतन्य चंद्रे रे कृपा हैया के हरे, चैतन्य चंद्रे रे बातों के राखी के पारे। तब रघुनाथ दास ने अपने मन में कुछ विचार किया। अब हुआ क्या, उस समय पानीहाटी गांव पास में है और वहां पर नित्यानंद प्रभु जो है हरिनाम का प्रचार करते हुए उधर पहुंचे हैं और नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के ही शरीर हैं। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में बंधे हैं अपनी माता के आदेश से कि जगन्नाथपुरी में उनको रहना पड़ेगा। तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि आप गौड़ देश में प्रचार करिए हरि नाम का और लोगों को कृष्ण भक्ति का से उद्धार करिए। तो चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से नित्यानंद प्रभु स्थान स्थान पर जाते हैं प्रचार करने के लिए। तो नित्यानंद प्रभु जो है पानीहाटी गांव में आए और रघुनाथ दास को पता चला। तो उन्होंने विचार किया कि अब नित्यानंद प्रभु का मैं दर्शन करूं तो शायद ये बाधा मेरी दूर हो सकती है। तो उन्होंने क्या किया, अपने पिता से आज्ञा ली और पिता ने आज्ञा दी कि ठीक है जाओ उनका दर्शन करके और वापस आओ। तो पिता से आज्ञा लेकर के नित्यानंद प्रभु के पास चले। अब पानीहाटी गाँव में पहुँचे है ना। तो नित्यानंद प्रभु ने जो है नित्यानंद प्रभु जो है वहाँ पर बैठे हुए हैं, एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं, गंगा नदी का तट है वहाँ, एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं और वो एक चबूतरा है उस पर बैठे हुए हैं और ऐसा लगता है करोड़ों सूर्यों का जैसे उदय हो गया हो ऐसा तेज नित्यानंद प्रभु का। गंगा तीरे वृक्ष मूले पिंडारे ऊपरे बस या छिन्हे में कोटि सूर्योदय करे। नित्यानंद प्रभु को घेर करके अनेक भक्त बैठे हुए हैं और नित्यानंद प्रभु का ऐसा प्रभाव देख करके रघुनाथ दास चकित हो गए। हाँ हाँ हाँ, कैसे भगवान नित्यानंद प्रभु जो है कैसे अद्भुत भगवान है, कैसा तेज है। अले ऊपर बहु भक्त हैं या से देता है देखिए प्रभु प्रभाव रघुनाथ है। रघुनाथ ने दूर से ही देखा और दंड के समान गिरकर नमस्कार किया। क्या किया नित्यानंद प्रभु को दूर से देखा किसने, रघुनाथ दास ने देखा और दंड के समान गिरे। कैसे दंड, ऐसा है दंड के समान गिरे है। और नित्यानंद प्रभु ने देखा नहीं था तो सेवक ने इशारा किया क्या कि रघुनाथ आपको नमस्कार कर रहा है बहुत दूर से। नित्यानंद प्रभु ने देख को दिखाया दंडवत है या कहीं पड़ीला कत दूरे सेवक कहे रघुनाथ दंडवत करे। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा ओ अब चोर ने दर्शन दिया है। नित्यानंद प्रभु क्या हुए, अच्छा अब चोर ने दर्शन दिया है, अब आया चोर मेरे पास में है ना। अब ये जो है बड़ी हंसी की बात है और बड़ी गहरी बात है, हंसने की बात भी और बड़ी गहरी बात है। नित्यानंद प्रभु ने क्या कहा, अच्छा अब चोर ने दर्शन दिया है ना। तो चोर तो सामने आता नहीं है लेकिन चोरी में जो है सफल नहीं हुआ तो अब जो है वो आया है, है? अब चोरी क्या है, उसने चोरी क्या की है। नित्यानंद प्रभु की संपत्ति जीवन धन कौन है, चैतन्य महाप्रभु है ना। और उनकी अनुमति के बिना चैतन्य महाप्रभु प्राप्त करने की कोशिश करना क्या है, चोरी है, उनकी चोरी है। आप समझे, उनकी चोरी है हा? और बार बार पकड़े गए, चोरी पकड़े गए और उनको जो है बांध करके रखा गया। वो घर का जो बंधन है वो क्या है, इसीलिए है ना। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि ये चोर जो है अब मेरे पास आया है, हा? क्यों, ये चोरी में सफल नहीं होता इसलिए आया है। तो भगवान क्या कह रहे, नित्यानंद क्या कह रहे हैं, इधर आओ इधर आओ, आज मैं तुम्हें दंड दूंगा, आज मैं तुम्हें दंड दूंगा। सुने प्रभु कहे चोरा दीनी दर्शन, आए आए आज तोर करे मु दंडन। प्रभु ने बुलाया, रघुनाथ दास संकोच कर रहे हैं आने रहे पास में, तब बलपूर्वक उनको पकड़ करके और अपना चरण कमल उनके सिर में रखा। तो तो दिखा रहे हैं ऐसे जैसे मतलब दंड दे रहे हैं, ये कर रहे हैं कृपा, तो अपना चरण जो है सिर के ऊपर रखा है ना। और जब ऐसे किया तो आना पड़ा, रघुनाथ दास जो है डर रहे थे आने में आना पड़ा है। तो कभी कभी शिक्षक जो है विद्यार्थी कान पकड़ता है ना, तो वो ऐसे करता है तो कान खिंचा चला जाता है ना। तो नितिन मोहन जब ऐसे किया तो आना पड़ा, और जब नीचे गिरे उनके चरण तो सिर के ऊपर चरण रख दिए। प्रभु बोलाते हो निकट न करे गमन, आदर्शिया तार माथे प्रभु धरी ला चरण। नितिन प्रभु स्वभाव से बहुत दयालु हैं और विनोदी हैं, मतलब हंसी मजाक करते हैं और दया भी करते हैं। तो नितिन प्रभु का क्या था, हंसी मजाक था और दया था, दया थी है, विनोदी हैं, दयालु हैं और विनोदी हैं। दयालु होने के कारण रघुनाथ दास इस प्रकार बोले, कौतुकी नित्यानंद सहज दया मैं रघुनाथ कहे के चुहैया सदै। तुम चोर हो क्योंकि पास आने के बजाय तुम दूर दूर रहते हो मुझसे, क्यों तुम चोर मुझसे दूर रहते हो। अब क्योंकि मैंने तुम्हें पकड़ लिया है इसलिए तुम्हें दंड दूंगा, अब चोरी का दंड दूंगा है ना। अब जब चोरी का दंड दूंगा तो तुम चोरी के अपराध से छूट जाओगे और तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। मतलब कहने का ये है, मैं तुम्हें दंड दूंगा और उसके बाद अनुमति दूंगा तो फिर चैतन्य महाप्रभु को तुम प्राप्त करोगे बिना किसी बाधा के है ना। निकट न आए चोरा भाग दूरे दूरे, आज लागे पाया थी दंडी मुँह तुम्हारे। तुम भोजन दो मुझको और मेरे संगियों को, दही और चोला खिलाओ। तो आज के दिन की घटना है ये, यही समय समझ लो, यही समय है। सवेरे से चले थे सब ग्राम से पानी हाथी पहुँचे तो करीब यही समय रहा होगा है। और भगवान नित्यानंद क्या बोले कि तुम मुझको और मेरे संगियों को क्या क्या खिलाओ, दही चिड़ा, दही चिड़ा खिलाओ है ना। अब देखिए कि कितना सौभाग्य रघुनाथ दास का है, कितनी खुशी की बात कि असीमित संपत्ति है और भगवान जो है मांग रहे हैं, भगवान को और वैष्णवों को जो है भोजन कराने का अवसर मिला है ना। दधि चिड़ा भक्षण करा है मोर गने, सुने आनंद तहिल रघुनाथ मन। रघुनाथ मन में बहुत प्रसन्न हो गए हैं कि क्या सेवा मिली है मुझे। रघुनाथ दास ने तुरंत ही अपने आदमियों को समस्त प्रकार के भोजन की वस्तुएं खरीद कर लाने के लिए गांव में भेजा है। उनके 20 आदमी उनके साथ में थे, मंगाओ सब प्रकार का भोजन मंगाओ। रघुनाथ दास चिवड़ा, दही, दूध, मिठाइयाँ, चीनी, केला और अन्य खाने की सामग्रियाँ लाए और चारों तरफ रख दिया। जो ही लोगों ने सुना कि महोत्सव होने वाला है, ओ महोत्सव होने वाला है, तो आ गए खाने के लिए। जहाँ भोजन है ना का जो है कार्यक्रम हो तो कहाँ कहाँ से लोग आ जाते, बिना बुलाए आ जाते हैं, आ गए हैं, आ गए। तो सभी प्रकार के ब्राह्मण और सज्जन पधारने लगे, असंख्य लोग हो गए, खुला मैदान, गंगा जी का तट है, भोजन हो रहा है, ओहो बड़ा अच्छा मौका है, चलो तो सब आ गए, बहुत असंख्य। बहुत सब नाम सुनी ब्राह्मण सज्जन, आसिते लागिले लोग असंख्य गणन। और भीड़ बढ़ते देखकर रघुनाथ दास ने दूसरे गांवों से भी भोजन की सामग्री मंगाई। इतना धन संपत्ति थी कि दुकान की दुकान खरीद लेते थे, जो भी चीज़ हो, केला हो, चीड़ा हो, दही हो, दुकान की दुकान खरीद लेते हैं है ना। 200-400 बड़े गोल मिट्टी के घड़े भी वो मंगा के आए, बड़े बड़े गोल घड़े, 5-7 बड़े बड़े मिट्टी के पात्र भी प्राप्त किए। एक ब्राह्मण इन पात्रों में नित्यानंद प्रभु की तुष्टि हेतु चिवड़ा भिगोने लगा। एक ब्राह्मण को इस कार्य में नियुक्त किया रघुनाथ दास ने, नित्यानंद प्रभु के लिए जो है भगवान है तो उनको तो जो है कोई ब्राह्मण जो है स्वयं तैयार करे, तो ब्राह्मण को लगाए उस कार्य में। एक स्थान पर इन बड़े बड़े पात्रों में गर्म दूध में चिवड़ा भिगोया गया, तब आधा चावल दही चीनी और केला के साथ मिलाया गया। एक ठाई तब तक दुग्ध चीड़ा भेजा अर्धे के छाने लदे चीनी का ला दिया। आधे भाग को ओटे दूध में और विशिष्ट प्रकार के केले में जो चांपा कला कहलाता है मिलाया गया, तब चीनी घी और कपूर डाला गया। जब नितंब वो अपनी धोती बदल चुके चबूतरे पर बैठ गए तो वो ब्राह्मण उनके सामने 7 बड़े बड़े पात्र लेकर के आया। इस चबूतरे पर नित्यानंद प्रभु के अधिकांश संगी और साथ ही अन्य बड़े लोग सर और एक गोले में भर गए। वो ऊपर का जो चबूतरा था वो नित्यान प्रभु के लिए और उनके संगियों के लिए था, और बाकी पब्लिक के लिए जो है नीचे का मैदान था। इन्हें सब नाम बताएं, रामदास, सुंदरानंद, गदाधर दास, मुरारी, कमलाकर, सदाशिव, पुरंदर, धनंजय, जगदीश, परमेश्वर दास, महेश, गौरी दास, घोड़ा कृष्णदास और धारणदत्त ठाकुर, नित्यान प्रभु के अन्य निजी संगी उनके साथ चबूतरे के ऊपर बैठे, उनके कोई गर्दा नहीं हो सकती, बहुत उनके संगी हैं। और सब की विषय सुनकर सभी प्रकार के विद्वान, ब्राह्मण, पुरोहित सब आ गए। नित्यान प्रभु ने उन सबका सम्मान किया, अपने साथ चबूतरे पर बिठाया। सुनि पंडित भट्टाचार्य जत विप्र आईला मान करे प्रभु सबारे ऊपरे बसाइला। हर एक को दो दो मिट्टी के पात्र दिए गए, उसको क्या कहते हैं कुल्लड़, मिट्टी के पात्र, एक में चिवड़ा और ओटा दूध था, दूसरे में दही और चिवड़ा था, दो दो पात्र दिए। अन्य सारे लोग चबूतरे के चारों ओर मंडली बनाकर बैठे, कोई ये नहीं गिन सका कि कुल कितने लोग थे, बहुत संख्या है ना, मंडली बना गए, मतलब चबूतरा बीच में है, चबूतरे के चारों तरफ एक घेरा, फिर उससे आगे और घेरा, फिर और घेरा, फिर और घेरा, घेरे कितने घेरे बन गए, और वो जो है मतलब कितने बड़े हो गए घेरे, आप सोचिए कैसा दृश्य रहा होगा। नित्यानंद प्रभु उनके संगी जो है बीच में चबूतरे के बीच में है, और सब जो है उन्हीं की तरफ मुंह करके जो है बैठे हुए हैं, घेरे लगा करके, घेरे के आगे और घेरा, फिर और घेरा, फिर और घेरा, कितना दूर तक जो है वो घेरे घेरे हो गए। हर एक को दो दो मिट्टी के पात्र दिए गए, एक में दही भिगोया चिवड़ा था, दूसरे में ओटे दूध में भिगोया चिवड़ा था। कुछ ब्राह्मण जिन्हें चबूतरे पर स्थान नहीं मिल पाया, ये अपने दो दो मिट्टी के पात्र लेकर गंगा के किनारे चले गए और वहीं चिवड़ा भिगोया। अन्य लोग जिन्हें गंगा के किनारे भी स्थान नहीं मिल सका, वे पानी में घुस गए। देखो पानी में घुस गए और वहीं दोनों प्रकार का चिवड़ा खाने लगे। इस तरह कुछ तो चबूतरे के ऊपर बैठे, कुछ चबूतरे के नीचे और कुछ गंगा के किनारे बैठे, उन सबों को भोजन मांगने वाले 20 व्यक्तियों द्वारा दो दो पात्र दिए गए। तो 20 आदमी हैं क्या सर्वर, क्या बोलते हैं आप लोग, परोसने वाले है ना, कि है ऊपर एक है काले के है गंगा तीरे 20 जन तीन ठाई परिवेशन करें। उसी समय राघव पंडित आ गए। राघव पंडित वहीं रहते हैं, राघव पंडित के घर वहीं है, कहाँ पर, पानी हाथी में। राघव पंडित आ गए और ये देख करके बड़े आश्चर्य से हंसने लगे। अब राघव पंडित के वहाँ से अचानक ये क्या हो रहा है, राघव पंडित जो है विचार कर रहे हैं कि मेरे घर में तो भगवान का भोजन तैयार हुआ है और पहले से निश्चित कर चुका था नित्यानंद प्रभु मेरे घर में भोजन करेंगे, और अभी क्या हो रहा है, कितनी संख्या में लोग बैठे हैं, अचानक अचानक क्या हो गया। तो हंसने लगे आश्चर्य से, ये क्या हो रहा है। हे निकाले आईला तथा राघव पंडित हाजिते लगीला जयती है या विषय। तो वो राघव पंडित अपने साथ घी में पकाई अनेक प्रकार के पकवान लाए थे, जिन्हें उन्होंने नित्यानंद प्रभु को दिए, वो प्रसाद के पहले नित्यानंद प्रभु के सामने रखे और भक्तों को वितरित किए गए। राघव पंडित ने नित्यानंद प्रभु से कहा कि प्रभु मैं आपके लिए पहले से भोजन भोग लगा चुका हूँ, किंतु आप यहाँ उत्सव में लगे हैं, मेरा भोजन तो ऐसे रखा हुआ है, फिर वो कौन खाएगा। राघव पंडित कहते मेरे घर में आपका भोजन भोग लगा हुआ तैयार है, और आपको मेरे घर में आना था भोजन करने के लिए, अब वो कौन खाएगा, आप तो यहाँ पर उत्सव मना रहे हैं। नित्यानंद प्रभु ने उत्तर दिया, दिन में ये सारा भोजन खाऊंगा, दिन का तो भोजन यहाँ है, और रात में मैं तुम्हारे घर में भोजन करूँगा, रात में तुम्हारे। अब आज कल जो है सवेरे का भोजन तो रात में खराब हो जाता है, लेकिन नित्यानंद प्रभु अगर चाहेंगे तो भोजन खराब नहीं होगा। कोई फ्रीज नहीं है, कोई कूलर नहीं है, कोई एसी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन सवेरे का भोजन भी अगर भगवान की इच्छा है तो रखा रहेगा, खराब नहीं हो सकता। तो नित्यानंद प्रभु ने क्या कहा, रात में तुम्हारे घर में खाऊंगा, जो भोजन रखा है वो तो सुरक्षित है, चिंता मत करो। प्रभु कहे ए द्रव्य जिन्हें करे भोजन रात्रे तो मार घरे प्रसाद करे मुँह भक्षण। क्यों नित्यान प्रभु कहते हैं कि ऐसा क्यों, अभी मैं तुम्हारे घर में क्यों नहीं आऊँगा, तो तुम्हारे घर में तो इतने लोग नहीं आ सकते ना भोजन के लिए, और इस समय ये जो भोजन हो रहा है ये मुझे ज़्यादा पसंद है। क्यों, क्योंकि मैं ग्वाला हूँ, क्योंकि मैं कौन हूँ, ग्वाला हूँ। अब ग्वाले तो नहीं है ये, तो ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए हैं, अपने को ग्वाला क्यों कह रहे हैं। हाँ ब्रज लीला में ये कौन है, बलदेव जी, बलदेव जी हैं, तो कहते हैं मैं तो ग्वाला हूँ। और ग्वालों को क्या लगता है, नदी के बालू के तट में जो है भोजन करना सखाओं के साथ संगियों के साथ, उसको क्या कहते हैं, पिकनिक। मुझे पसंद है, मुझे पिकनिक ज़्यादा पसंद है, किसी घर में भोजन करने से ज़्यादा अच्छा लगता है मुझको पिकनिक, है ना। तो ये पिकनिक जो मनाते हैं लोग, कि वास्तव में भगवान से आ रहा है, कि भगवान में हैं ये सब गुण है। गोप जाति आमी बहु गोपे गाण संगे आमे सो के पाई ए कोलिन भोजन रंगे। नितन कहूँ ने राघव पंडित को बैठाया कि चलो तुम भी बैठो, तुम भी करो भोजन, और उन्हें भी दो पात्र दिलवाए। हाँ दो प्रकार के चिवड़े भिगोए गए थे, एक पात्र में औटे दूध में चिवड़ा भिगोया था, दूसरे पात्र में दही में। जब हर एक को चिवड़ा परोसा जा चुका तो नितन बहुत ध्यान में श्री चैतन्य महाप्रभु को ले आया। अब देखिए भोग लगाने की विधि देखिए कैसी अद्भुत है। अभी देखो इतनी संख्या में लोग बैठे हैं और सबको जो है दो दो पात्र मिल गए हैं, कोई नहीं खा सकता जब तक नित्यानंद प्रभु ना खाएं। और नित्यानंद प्रभु कैसे खाएंगे, वो भोग लगाएंगे चैतन्य महाप्रभु को, है ना। अब चैतन्य महाप्रभु बहुत दूर हैं जगन्नाथपुरी में, तो ध्यान की शक्ति से उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को बुला लिया। अब सुने बड़े ध्यान से, अब हुआ क्या, सकल लोके रे चिड़ा पूर्ण जब हिलाऊ ध्यान तब प्रभु महाप्रभु रे आमिलाऊ। प्रभु महाप्रभु को ले आए ध्यान में, प्रभु मतलब नित्यानंद प्रभु, महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु को ध्यान में ध्यान की शक्ति से ले आए। अब चैतन्य महाप्रभु आ गए नित्यानंद प्रभु के ध्यान की शक्ति से, लेकिन सब लोग नहीं देख पाते हैं, कोई कोई देख पा रहा है, बहुत कम लोग देख पा रहे हैं, कोई कोई देख पा रहा है कि वो आ गए हैं। और नित्यानंद प्रभु जैसे खड़े हैं महाप्रभु उनके साथ खड़े हैं, है ना। अब हुआ क्या, अब भोग लगाएंगे दोनों भाई, तो कैसे भोग लगाएंगे। जब चैतन्य महाप्रभु आए नित्यानंद प्रभु खड़े हो गए, तब उन्होंने देखा कि किस तरह अन्य लोग दही और ओटे दूध के साथ चिवड़ा का आनंद ले रहे हैं। महाप्रभु अला देखी ने ताई ओठीला पारे नहीं है साबा चिड़ा देखी पेला नीला। अनुवाद सही नहीं है, इसमें यह है कि जब दोनों खड़े हो गए नित्यानंद और चैतन्य महाप्रभु, अब ये जो है सब सबके पास जो भोजन रखा है देख करके वो भोग लगा रहे हैं। नित्यानंद चैतन्य दोनों देख रहे हैं आनंद पूर्वक, इस प्रकार से वो अपनी दृष्टि के द्वारा भोग लगा रहे हैं। फिर क्या हुआ, नित्यानंद प्रभु ने प्रत्येक पात्र से चिवड़े का एक कौर लिया और हंसी हंसी में चैतन्य महाप्रभु के मुंह में ठूस दिया। अब लोग क्या देख रहे हैं, लोग तो यही देख रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु ने निकाला दूसरे की थाली से कुछ ग्रास और ऐसे आकाश में ऐसे किया और गायब हो गया। चैतन्य महाप्रभु दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, तो इतना दिखाई दिया कि उन्होंने ऐसे लिया और ऐसे किया और क्या हो गया, गायब हो गया, कि चैतन्य महाप्रभु के मुँह में ठूस दिया, है ना। तो ये भोग लगाने की विधि है इस तरह से, तो सबके पात्र से नित्यानंद प्रभु ऐसे कर रहे हैं, निकाल निकाल करके चैतन्य महाप्रभु के मुँह में ठूस रहे हैं। सकल कुंडीर होल मार कीड़ा एक एक ग्रह महाप्रभु मुख्य देन करी परिहास। और महाप्रभु क्या कर रहे हैं, हंसते हंसते भोजन का ग्रास निकाल रहे हैं सबके प्लेट से या पात्र से और नित्यानंद प्रभु के मुंह में ठूस रहे हैं। अब नित्यानंद प्रभु के मुंह में जब आ रहा है तो दिखाई दे रहा है कि उनके मुंह में आ रहा है और खा रहे हैं नित्यानंद प्रभु, ये कहाँ से आ रहा है ये पता नहीं चल रहा है। चैतन्य महाप्रभु का हाथ तो दिखाई नहीं पड़ रहा है ना, अब वो जो है किसी के पात्र से भोजन निकाल करके नित्यानंद प्रभु के मुंह में डाल रहे हैं, तो नित्यानंद प्रभु खा रहे हैं, उनके मुंह में आ रहा है, हाँ उन्होंने ऐसे किया अब मुंह में आ गया और खाने लगे। अब ये जो है मतलब आश्रम से कोई दिखाई दे रहा है कि नित्यानंद प्रभु क्या कर रहे हैं, नित्यानंद प्रभु सबके प्लेट से निकाल करके ऐसे कर रहे हैं और गायब हो जाता है, और उनके मुंह में कैसे आ रहा है कि वो खाते जा रहे हैं, तो ये कैसे आ रहा है, ये सब कुछ आश्चर्य लग रहा है, कैसे भोग लग रहा है, ये है भोग लगाने की विधि। अब ये 3-4 साल पहले की बात है कि ये जो दिन था शुक्रवार को पड़ा था, तो शुक्रवार को जो है रोहिणी में राधा कृष्ण प्रभु घर में हर शुक्रवार को होता था सत्संग, तो कभी मैं भी जाता था, तो उस दिन मैं गया था उनके लिए सत्संग। तो उससे पहले हम गए थे शीतला देवी के घर में, हमारी गुरु बहन हैं जो लॉर्ड चैतन्य स्कूल चलाती हूँ रोहिणी में, तो उनके घर में जो भगवान कहता है कि रहें गौड़ने टाइम में बहुत लीलाएँ करते हैं, तो उस दिन साक्षात हमने देखा वो दही चिवड़ा का भोग लगाया था उन्होंने, और भोग लगा करके फिर मेरे पास उन्होंने दिया खाने के लिए, मैंने खाए, बहुत स्वादिष्ट लगा, बड़ा स्वादिष्ट लगा। अच्छा, वो उनके पति थे आनंद चैतन्य प्रभु जी, तो वो हंस करके बोले कि प्रभु जी आप अभी खा लीजिए, फिर मैं आपको कुछ बात बताऊँगा, बड़ी अद्भुत बात है। तो हमने जब खा लिया, बोले अब आप आइए हमारे साथ, तो उनके पूजा के घर में हमको ले गए, तो गौड़ ने कहा कि अच्छा देखिए इतनी बड़े हैं, कितने यहाँ पर हैं गौड़ देंगे, अच्छा देखिए तो दिखाया उन्होंने, तो गौड़ ने कहा खाया, गौड़ ने खाया, और उनके जो है मुँह में लगा हुआ दही चिवड़ा और जो है कपड़ों में लगा हुआ, और मुँह से जो है एक ऐसा पाइप बना था वो दही चिवड़ा का, वो तो कोई बना नहीं सकता, तो ऐसे मतलब वो खा रहे हैं तो उनको खाना नहीं पड़ता है, वो दही चिवड़ा उनके मुँह में ऐसे जा रहा है, तो मुँह से जो है मतलब ऐसा पाइप बना हुआ था दही चिवड़ा का। तो आज के दिन जो है गौरताई दही चिवड़ा का भोग लगाते हैं, मतलब जो है विशेष ये जो है लीला मैंने अपनी आँखों देखी है, आप समझे ना, तो गौरताई को जो है दही चिवड़ा का भोग जरूर लगाना चाहिए और भक्तों को जो है खिलाना चाहिए आज के दिन, है ना। तो ये जो है 500 साल पहले, 500 साल से ज़्यादा हो चुका है ये लीला गौड़ ने पहले साक्षात की थी, दही चिवड़ा जो है खा रहे हैं, खिला रहे हैं, एक दूसरे को खिला रहे हैं, लेकिन वे अर्थव्य ग्रह के रूप में भी जो है वो प्रसन्न होते हैं इसको ग्रहण करने में। इस प्रकार नित्यानंद प्रभु भोजन करने वालों की मंडलियों में से होकर घूम रहे हैं, है? कैसे घूम रहे हैं, पहले घेरे में, फिर दूसरे घेरे में, फिर तीसरे घेरे में, ऐसे जो है सब घेरे में नित्यानंद प्रभु क्या किया, घूमे और सबकी थाली से जो है निकाल निकाल करके खाया और चैतन्य महाप्रभु को खिलाया, इस प्रकार से किया। हे मत नेताई बोले सकल मंडले गंडई रंग देखे वैष्णव सकल। अब ये जो है सब वैष्णव जो है ये आश्चर्य देख रहे हैं ये आश्चर्य सब वैष्णव देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, नित्यानंद प्रभु अकेले दिखाई पड़ रहे हैं, हैं? और कर क्या रहे हैं, सबसे निकाल निकाल करके ऐसे कर रहे हैं, आकाश में कर रहे हैं, और कहाँ गायब हो जाता है, और उनके मुंह में कहाँ से आ जा रहा है ये पता नहीं चलता सबकी जो है सबकी थाली से भोग लगाया इस तरह से। जब नित्यानंद प्रभु घूम रहे थे तो उन्होंने क्या किया ये कोई नहीं समझ पाया, अब कौन समझ पाएगा ये करते क्या है और हो क्या रहा है, कोई समझ नहीं पा रहा। किंतु कुछ लोग जो भाग्यशाली थे जो देख सके कि चैतन्य महाप्रभु उपस्थित है, तो वो देख रहे थे, तो वो उनको सब कुछ दिखाई पड़ रहा है कि चैतन्य महाप्रभु उठा करके नित्यानंद प्रभु के मुंह में ठूस रहे हैं और नित्यानंद प्रभु उठा करके चैतन्य महाप्रभु के मुंह में ठूस रहे हैं। कि करे अभेदा इहा के है नाए जाने महाप्रभु दर्शन पाए कौन भाग्यवानी। तब नित्यानंद प्रभु हंसे और बैठ गए, उन्होंने दाहिनी ओर 4 पात रखे जिनका चिवड़ा उबले चावल से नहीं बनाया गया था। नित्यानंद प्रभु ने श्री चैतन्य महाप्रभु को स्थान प्रदान किया, स्थान प्रदान किया और उन्हें बिठाया, तब दोनों भाई एक साथ चिवड़ा खाने लगे। अब क्या थे, 4 पात्र, 4 पात्र का मतलब 2 पात्र नित्यानंद प्रभु के, 2 पात्र चैतन्य महाप्रभु के। अब दोनों अपने अपने पात्र से खाएंगे, हैं? तो 2 पात्र रखे और आसन भी रखा, अब कोई देख तो नहीं पा रहा है कि चैतन्य महाप्रभु बैठे हैं, लेकिन पात्र का जो है जो भोजन है वो तो घटता जा रहा है ना, इससे चैतन्य महाप्रभु खा रहे हैं तो घटता जा रहा है। अपने साथ चैतन्य महाप्रभु को खाते देकर नित्यानंद प्रभु अत्यधिक प्रसन्न हुए, उन्होंने नाना प्रकार के भाव के आदेश प्रदर्शित किए। नित्यानंद प्रभु ने आज्ञा दी, सभी लोग हरि नाम का कीर्तन करते हुए भोजन करो, हरि हरि की ध्वनि से तुरंत ही सारा ब्रह्मांड भर गया। आज्ञा दिला हरि बलि का रह भोजन, हरि हरि ध्वनि उठी भरी ला भुवन। सुनता हूं आज्ञा दी क्या, हरि 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 हरि, इस तरह से जो है करके सबने भोजन शुरू किया। जब सारे वैष्णव हरि हरि बोलकर भोजन कर रहे थे तो उन्हें स्मरण होया किस किस तरह कृष्ण बलराम अपने ग्वाल बाल साथियों के साथ यमुना के तट पर भोजन करते थे। अभी जितने भक्त हैं जो भोजन कर रहे हैं इन सबको याद आ गया, बल्कि पूर्व जन्म की चेतना में पहुंच गए। क्या कि सब हम सब वृंदावन में हैं, हम सब ग्वाले हैं और हम लोग भोजन कर रहे हैं यमुना के तट पर। अभी तो वृंदावन नहीं है, वो तो पानीहाटी है, और ये यमुना जी भी नहीं है जो गंगा जी हैं, लेकिन उनको जो है वो चेतना आ गई पिछले जन्म की है। और ये चेतन और नित्यानंद तो हैं कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम के साथ हम लोग जो है भोजन कर रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु अत्यंत दयालु और उदार हैं। जैसे रघुनाथ दास का सौभाग्य था कि उन्होंने ये सब स्वीकार किया। रघुनाथ दास का कितना सौभाग्य, भगवान कृष्ण बलराम जो है उनका भोजन कर रहे हैं, उनका दिया हुआ भोजन कर रहे हैं। नित्यानंद प्रभु के प्रभाव और कृपा को कौन समझ सकता है, वे इतने शक्तिशाली हैं कि चैतन्य महाप्रभु को गंगा तट पर केवड़ा खाने के लिए उन्होंने बुला लिया। इतनी शक्ति, कितनी दूर से भगवान को बुला लिया उन्होंने। नित्यानंद ने प्रभाव कृपा जाने दे कुंजन, महाप्रभु आनी कराए पोले में भोजन। श्री रामदास इत्यादि जितने ग्वाल बाल अंतरंग भक्त थे, प्रेमा विष्णुलीन थे, गंगा के तट को यमुना तट समझ रहे हैं। जब अनेक गांव के दुकानदारों ने महोत्सव के बारे में सुना, अरे महोत्सव रहा है, तो अपनी दुकानें लेकर के आ गए। क्या चिवड़ा दही संदेश मिठाई केला बेचने के लिए दुकानें लग गई। अब वहाँ दुकानें लग गई, जैसी सब प्रकार की दुकानें लगी, रघुनाथ दास ने सब खरीद दुकान की दुकान खरीदी। इतना धन था है? थोड़ा नहीं लेते थे, पूरी दुकान की दुकान खरीदते थे और उनके सामान का मूल्य चुकता करके और उनको भी भोजन दिया। तुम लोग भी बैठो, तुम लोग भी खाओ, दुकानदारों को भी बैठाया, तुम लोग भी खाओ। जो भी देखने के लिए आया कि कैसा कुतूहल हो रहा है, उसको भी जो है बैठाया और केवड़ा दही और केला खिलाया। जो भी आए क्योंकि ये क्या हो रहा है, सबको जो है देखने की सबकी क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है। जो भी आए बैठो बैठो बैठो, चलो बैठो चलो बैठो, खिला रहे हैं, सबको खिला रहे हैं। नित्यानंद प्रभु ने भोजन करने के बाद हाथ मुँह धोया, रघुनाथ दास को चार पात्रों में बचा हुआ भोजन दिया। रघुनाथ दास ने क्या दिया, चार पात्र, दो पात्र नित्यानंद प्रभु के और दो पात्र चैतन्य महाप्रभु के। हरिओ हरिओ हरिओ, उन्हें रघुनाथ दास को जो है कि चार पात्र मिला। भोजन करी नित्यानंद आचमन कैला, सारे कुंडिर अवशेष रघुनाथ लीला। नित्यानंद के तीन अन्य बड़े पात्रों में भोजन बचा रहा, जिसे एक ब्राह्मण ने सारे भक्तों को एक एक कर एक एक कौर बांध कर दिया। रघुनाथ दास ने केवल एक पात्र का भोजन लिया, बाकी तीन पात्र का सबको बंटवा दिया, थोड़ा थोड़ा बांटो सबको। तब वो ब्राह्मण एक फूल की माला लाया, उसे नित्यानंद प्रभु के गले में पहनाया, उनके सारे शरीर में चंदन का लेप किया। भोजन के बाद फूल की माला पहनाई, फिर चंदन का लेप किया, किसको, नित्यानंद प्रभु को, है ना। अब ब्राह्मण से करवाया, रघुनाथ दास अपने को अशुद्ध मानते हैं कि मैं इतना अशुद्ध हूँ, मैं नित्यानंद प्रभु को कैसे गले में माला डाल सकता हूँ, हाँ, और मैं चंदन कैसे लगा सकता हूँ नित्यानंद प्रभु को। तो ब्राह्मण से जो है माला डलवाई और चंदन का लेप करवाया। प्रभु जो है फिर हंस करके, नित्यानंद प्रभु ने अपने हाथों से सारे भक्तों में बची हुई फूल मालाएं और चंदन बांट दिया। नित्यानंद प्रभु के छोड़े भोजन का जोशन पाकर अत्यंत प्रसन्न रघुनाथ दास ने कुछ खाया और बाकी सब अपने संगियों को बांटा। इस तरह मैंने केवड़ा दही महोत्सव के संदर्भ में नित्यानंद प्रभु की लीलाओं का वर्णन किया है। इसके बाद इसमें जो कथा है वो शाम की कथा का वर्णन आता है कि राघव पंडित के घर में नित्यानंद प्रभु ने कैसे भोजन किया। तो आज शाम को भी फरीदाबाद में मेरा प्रसन्न है, तो हमने विचार किया कि शाम की जो घटना है वो आज शाम को वहाँ पर सुनाएंगे। राघव पंडित के घर में उन्होंने भोजन किया था। तो अभी हाँ कुछ अगले दिन की बात है, अब अगले दिन की बात है तो हुआ क्या, हाँ क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी से संबंध है ना, अगले दिन की बात है तो मैं बता रहा हूँ। रघुनाथ दास ने वहाँ जाकर नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों की पूजा की और राघव पंडित से अपनी इच्छा बताई। अब राघव पंडित को बताया अपनी इच्छा क्या, राघव पंडित से कहा मैं अधम अत्यंत पापी पतित हूँ, तो भी श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण पाना चाहता हूँ। राघव पंडित से कहा, नित्यानंद प्रभु से सीधे बात नहीं कर सकते हैं तो राघव पंडित उनके बड़े अंतरंग संगी हैं, तो राघव पंडित से कह रहे हैं कि मैं बहुत अधम पतित हूँ है पापी हूँ, तो भी चैतन्य महाप्रभु की शरण पाना चाहता हूँ। अधम है पाम है मोई हीन जीव अधम मोरे इच्छा है पाम चैतन्य चरण। चंद्रमा को पकड़ने का इच्छुक जैसे गौना हो, कोई लंबा से लंबा आदमी भी चंद्रमा को नहीं पकड़ सकता, फिर गौना तो एक गौना जैसे चंद्रमा को पकड़ना चाहे ऐसे मैं चैतन्य महाप्रभु को पाना चाहता हूँ। मैंने अनेक बार प्रयत्न किए लेकिन कभी सफल नहीं हो सका। बामन ही अचान धरी बारे चाय अनेक यत्न केनु ताते कभुन सिद्ध नाय। जितनी बार मैंने भाग जाना चाहा, घर के संबंध तोड़ देना चाहा, उतनी बार मेरे पिता माता ने मुझे बांध कर करके रखा। यत बार पलाई आमु गृह बेचारिया पिता माता धोए मोरे रखा हे बांधिया। आपकी कृपा के बिना कोई भी श्री चैतन्य महाप्रभु के शरण प्राप्त नहीं कर सकता है। रघुनाथ दास कह रहे हैं राघव पंडित से, लेकिन अपना संदेश दे रहे हैं नित्यानंद प्रभु के लिए कि आपकी कृपा के बिना, तो मेरा जो संदेश है नित्यानंद प्रभु को बता दो। नित्यानंद प्रभु तो वही हैं लेकिन वे संकोच बस राघव पंडित से कह रहे हैं कि आपके बिना, आपकी कृपा के बिना कोई भी श्री चैतन्य महाप्रभु के शरण प्राप्त नहीं कर सकता, किंतु यदि आप कृपालु हो तो अधम से अधम व्यक्ति ही उनके चरणों के शरण पा सकता है। तो मार्ग काव्य ना के हैं चैतन्य न पाए तो नी कृपा कर ले तारे अधम ये है पाए। यद्यपि मैं अयोग्य हूँ और ये याचना करते समय बहुत भयभीत हूँ, मुझे डर भी लग रहा है कि मेरा इतना साहस कैसे हुआ कि मैं इतनी बात भी कहूँ, तो अभी मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में शरण प्रदान करके मेरे प्रति विशेष कृपा कीजिए। अयोग्य मोय निवेदन करिते करि भय मोरे चैतन्य देह गोसाई है या सदय। आप मेरे सिर पर अपने चरण कमल रखकर मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं बिना कठिनाई के श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण प्राप्त कर सकूँ। आपके इसी आशीर्वाद के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। रघुनाथ दास की ये यात्रा सुनकर नित्यानंद प्रभु हंसे, तो राघव पंडित ने जाकर के नित्यानंद प्रभु को ये बताया कि रघुनाथ दास ऐसा कह रहा है, तो हंसे और सारे भक्तों से बोले रघुनाथ दास का जो संपत्ति है इंद्र के समान है। हंस करके सब भक्तों से कहते हैं, क्या कहते हैं कि देखो रघुनाथ दास के पास जो संपत्ति है वो कैसी है, इंद्र के समान है। सुनेहा से कहे प्रभु सब भक्त गणे इहारे विषय सुख इंद्र सुख समय। श्री चैतन्य महाप्रभु की रघुनाथ दास पर इतनी कृपा है उससे ये सब अच्छा नहीं लगता है। नित्यानंद प्रभु क्या करें, चैतन्य महाप्रभु की पहले से ही कृपा है रघुनाथ दास के ऊपर कि उसको ये सब अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए तुम सारे लोग उस पर कृपा करो। नित्यानंद प्रभु क्या करें, सब भक्तों से क्या करें कि तुम सब भक्त लोग रघुनाथ दास के ऊपर कृपा करो हैं और आशीर्वाद दो, इसको आशीर्वाद दो कि शीघ्र चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की शरण प्राप्त करें, है ना। तो नित्यानंद प्रभु जो है स्वयं क्या भक्तों को श्रेय देना चाहते हैं, तो भक्तों से कह रहे हैं कि आप सब लोग जो है आशीर्वाद दीजिए, क्यों, क्योंकि इसने आप लोगों को प्रसाद खिलाया है ना। तो विधि है चैतन्य कृपा तैसे है ना ही भाई मने सब आशीर्वाद करे पाओ चैतन्य चरणे। जो व्यक्ति कृष्ण के चरण कमलों की सुगंध का अनुभव करता है, एक बार कृष्ण के चरणों की सुगंध मिल जाए वो ब्रह्मलोक के सुख को भी महत्व प्रदान नहीं करता, स्वर्ग तो क्या है, क्या जिसको चैतन्य महाप्रभु चरणों की एक बार सुगंध मिल गई तो स्वर्ग तो कुछ भी नहीं है, ब्रह्मलोक के सुख को भी वो नहीं पाना चाहेगा। कृष्ण पाद तन गंध जय जन पाए, ब्रह्मलोक आदि सुख ताए नहीं भाए। भगवान की कृपा प्राप्त करने के इच्छुक लोगों के द्वारा उनकी उत्तम स्तुतियाँ की जाती हैं। इस तरह के उत्तम श्लोक कहलाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करने के लिए परम उत्सुक होने के कारण राजा भरत ने अपनी युवावस्था में ही अपनी स्त्री संतान मित्रों और साम्राज्य का त्याग कर दिया, जैसे कोई मल त्याग है। ये कौन से भरत हैं? हाँ, आगे चल करके वो उनको हरण का शरीर मिला, फिर जड़ भरत चलाए। तो ये भगवान ऋषभदेव के पुत्र हैं भरत, जिनके नाम से भारत वर्ष पड़ा है। उन्होंने जो है युवावस्था में ही अपनी पत्नी संतान साम्राज्य सब कुछ त्याग दिया था। कैसे त्यागा था? मल की तरह ऐसे त्यागा। यो दुष्ट जान दार सुकाम सुरेंद्राजम मृदिष्ट समम जहो जो वैर मलवन उत्तम श्लोक है लाल सहम। तब नितन कहुने रघुनाथ दास को अपने पास बुलाया। नितन कहु रघुनाथ दास को अपने पास बुलाते हैं तब वो जाते हैं, नहीं तो उनकी हिम्मत नहीं होती नितन कहु के सामने जाने की। तो बुलाया अपने पास और उसके सिर पर अपने चरण रखे और बोले, तब रघुनाथ प्रभु निकट बुलाई ला तार माथे तब धरे कही ते लागी ला। हे रघुनाथ दास, क्योंकि तुमने गंगा नदी के तट पर इस भोजन की व्यवस्था की है, इसी चैतन्य महाप्रभु तुम पर अपनी कृपा दिखाने के लिए यहाँ पर आए। नितन को क्या करें कि चैतन्य महाप्रभु ने तुम्हारे ऊपर कृपा करी है, जो आए और क्या किया, तुम्हारा भोजन खाया है ना। तुम ये कराइला ए बोले न भोजन तुम्हारी कृपा करे गौर कैला आगमन। अपनी अहेतु की कृपा से उन्होंने केवड़ा दूध का भोजन किया। किन्होंने किया? चैतन्य महाप्रभु ने। और रात में भक्तों का नृत्य देखकर उन्होंने भोजन किया। और रात की लीला वो मैंने आपको सुनाई नहीं है, रात में भी जो है भगवान ने भोजन किया। फिर चैतन्य महाप्रभु गौर हरि तुम्हारा उद्धार करने के लिए स्वयं यहाँ आए। अब समझ लो कि तुम्हारे बंधन सब दूर हो चुके हैं। ऐसे देखने में तो कुछ नहीं पता चलता, अभी बंधे हुए, अभी वो कहीं नहीं जा सकते। उनके साथ 20 आदमी हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी जो है कहीं नहीं जा सकते, उनको घर ही जाना पड़ेगा। लेकिन नितिन ने कहा कि अब तुम्हारे ऊपर कोई बंधन नहीं, तुम बड़े आराम से निकल जाओगे। तुम्हारी गौर गौर आईला गौर आईला आपने छूट ले तुम्हारे जत जिग्नादी बंधन। फिर चैतन्य महाप्रभु तुम्हें स्वीकार कर लेंगे और अपने सचिव स्वरूप दामोदर के अधीन रखेंगे। स्वरूप दामोदर उनके सबसे निकट के संगी हैं चैतन्य महाप्रभु, और उनके अधीन में तुमको रखेंगे चैतन्य महाप्रभु। इस तरह तुम उनके सर्वश्रेष्ठ विश्वस्त अंतरंग सेवक बन जाओगे, फिर चैतन्य महाप्रभु की शरण प्राप्त करोगे। इस तरह आश्वस्त होकर तुम अपने घर जाओ, तुम शीघ्र ही बिना किसी अवरोध के श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण प्राप्त करोगे। अभी तक चोरी की, अब तुम चोरी के अपराध से मुक्त हो चुके हो और अब तुम्हें मेरी अनुमति प्राप्त हो चुकी है, अब मेरी धन संपत्ति तुमको प्राप्त हो जाएगी। निश्चिंत हैया या है आपान भवन अचिरे निर्विघ्न पावे चैतन्य चरण। नितिन कहु ने समस्त भक्तों से रघुनाथ दास को आशीर्वाद दिलवाया है, सब भक्तों से है। रघुनाथ दास ने सब भक्तों को प्रणाम किया, सब भक्तों ने आशीर्वाद दिया और रघुनाथ दास ने सब के चरण कमलों में सादर वंदना की। सब भक्त द्वारे तारे आशीर्वाद कराई ला सबारे चरण रघुनाथ बंदीला। नितिन कहु थे और उसके बाद अन्य सारे वैष्णवों की आज्ञा लेकर रघुनाथ दास ने राघव पंडित से गुप्त मंत्रणा की। गुप्त मंत्रणा राघव पंडित से फिर अब एकांत में कुछ बात की। अब वो घर लौट के जा रहे हैं, राघव पंडित से सलाह लेकर उन्होंने चुपके से नित्यान प्रभु के खजांची के हाथ में 100 स्वर्ण मुद्राएं और 7 तोला सोना दे दिया। कितना दिया सर? 100 स्वर्ण मुद्रा और 7 तोला सोना। ये किसको दिया? नित्यान प्रभु के खजांची को दिया। रघुनाथ दास ने खजान जी को मना कर दिया कि अभी निश्चय को उसे मत कहना, किंतु जब मैं चला जाऊं तब उनको बता देना। क्यों? रघुनाथ दास ने कहा खजान जी से कि नित्यान प्रभु को अभी नहीं बताना कि मैंने ये दिया है, और जब मैं चला जाऊं तब बता देना। तो दोनों बातें समझना पड़ेगा। क्यों क्यों कहा? हाँ अगर अभी बताएंगे, अगर मान लो मना कर दें तभी नहीं बताना, जब मैं चला जाऊं तो बता देना, तो उनको पता भी होना चाहिए कि मैंने दिया है ना, फिर तो उनको स्वीकार करना ही पड़ेगा ना, है ना। इसलिए उन्होंने कहा दोनों बातें कहीं, अभी नहीं बताना, फिर जब मैं चला जाऊँ तो बता देना। तब राघव पंडित है ना उन्हें अपने घर ले गए, उन्हें हर्ष विग्रह का दर्शन कराया, रघुनाथ दास को माला चंदन का ले दिया, रघुनाथ दास को घर के रास्ते में खाने के लिए बहुत सा प्रसाद दिया। रघुनाथ दास ने पुनः राघव पंडित से कहा कि मैं नित्यानंद प्रभु के सब भक्तों को और आश्रितों को कुछ धन देना चाहता हूँ। अभी तो नित्यानंद प्रभु को इतना दिया, अब नित्यानंद प्रभु के जो संगी हैं उनको भी मैं देना चाहता हूँ। तुम जिसे जितना समझो उतना 20, 15, 12, 10, 5 मुद्राएँ दो। अब आप विचार करो कि किसको कितना देना है, किसको 20 स्वर्ण मुद्रा, किसी को 15, किसी को 12, 10, 5, किसको देना है, कौन कितने सम्मानित हैं, उस हिसाब से आप निर्णय करो और गिन करके हमसे ले लो। सबके नाम की लिस्ट बनाओ और इनको 20 देना है, इसको 15 देना है, इनको स्वर्ण मुद्राएँ कितने हैं, और टोटल मुझसे ले लो और आप सबको फिर बांटो। रघुनाथ दास ने दी जाने वाली राशि का ब्यौरा तैयार किया और वो राशि राघव पंडित को दे दी, टोटल दे दिया, 15, 20, 10, 15 ऐसे करके टोटल इतना हुआ। रघुनाथ दास ने उनको राघव पंडित को दिया, ये सबको दे देना। रघुनाथ दास ने अत्यंत विनयपूर्वक राघव पंडित के सामने अन्य सारे भक्तों को देने के लिए 100 स्वर्ण मुद्राएँ और 2 तोला सोना रख दिया। राघव पंडित के पांवों की धूल ली किसने? रघुनाथ दास ने। राघव पंडित के पांवों की धूल लेकर के रघुनाथ दास अपने घर आए, नित्यानंद प्रभु के प्रति असीम कृतज्ञता प्रकट की और उन्होंने उनका कृपापूर्ण आशीर्वाद प्राप्त किया। तब आगे फिर वो घटना आती है कि कैसे वो जो है निकल पाए अपने घर से, जगन्नाथपुरी कैसे पहुँचे। लेकिन आज के दिन की जो घटना है वो हमें सुनी, ठीक है। तो आज की जो घटना है वो बड़ी दिव्य है, बहुत अद्भुत घटना है। और ये घटना क्या है? भगवान को प्राप्त करने के लिए जो बाधाएं हैं वो दूर हुई आज के दिन। कितने दिनों से रघुनाथ दास परेशान थे, है ना, आज के दिन जो है वो सब बाधाएं दूर हुई। भगवान की प्राप्ति में जो बाधाएं होती हैं, ठीक है ना, अपने कई जन्मों के कर्म के बंधन होते हैं, है ना, वो सब जो है दूर होते हैं, टूट जाते हैं, जब हम भगवान और वैष्णवों की सेवा करते हैं, उनके चरणों की धूल लेते हैं, और उनको भोजन कराते हैं, ठीक है। अब किसी का कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न? हाँ जी, हाँ 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 अच्छा प्रश्न है कि दान गुप्त रहे। ऐसा है कि दान गुप्त रहे या दान बताया जाए, ये दोनों बातें कुछ परिस्थितियों के अनुसार विचार की जाती हैं कि क्या होना चाहिए, गुप्त दान दिया जाए या बता करके दान दिया जाए। तो गुप्त दान का जो विचार है वो इसलिए आता है कि भाई अगर मैं बताता हूँ तो इसमें जो है मेरे अंदर घमंड आएगा कि मैंने दिया, ये दिखावा कर रहे हैं, कि दिखावा कर रहे हैं, ये जो है मतलब ना आए कि मैं दिखावा कर रहा हूँ ना। अच्छा दूसरी बात है, अब बताने के पीछे भी एक विचार है, अगर मैं बताता हूँ कि मैंने ये भी दान दिया और मैं दिखा रहा हूँ कि मैंने दान दिया, इस विचार से कि दूसरे लोग भी करें, आप समझ रहे, तो ये सही है कि बताया जाए, आप समझ। अब कई लोग जो है हमारे ऊपर दोष लगाते हैं, हम लोगों पर दोष लगाते हैं कि लोग जो है सड़कों में हरिनाम कीर्तन करते हैं, दिखावा क्यों करते हैं, साधु हैं अपना एकांत में भजन करें, ये सब दिखावा क्यों करते हैं, आप समझ रहे हैं, तो हम क्यों दिखावा करते हैं, ताकि सब लोग भी इसमें शामिल हों, सुने। और ये जो है विशेष कृपा है भगवान के भक्तों की कि हम दिखा रहे हैं, हम तो दिखा रहे हैं तभी तो जो है लोग मतलब इसको ग्रहण करेंगे, नहीं तो कैसे ग्रहण करेंगे। ये सब जो है जरूरत भी है दिखाने की, ठीक है ना। तो दोनों बातें हैं। तो असली बात तो यही है कि जो है जब दान दिया जाता है नित्यानंद प्रभु को बताना, नित्यानंद प्रभु को बताना, तो ये भी जो है ज़रूरी है कि नित्यानंद प्रभु को सूचित किया जाए। जो मैंने सेवा की है तो नित्यानंद प्रभु को जो है पता होना चाहिए, तो ये भी जो है मतलब उनकी इच्छा है कि उनको पता होना चाहिए। लेकिन साथ साथ ये भी है कि वो डरते हैं कि वो स्वीकार नहीं करेंगे, तो इसलिए उन्होंने जो है मतलब कहा कि अभी नहीं बताना, ठीक है ना। तो सेवा जो है मतलब हमेशा ऐसी होती है कि उसकी पूरी सूचना उस व्यक्ति को मिले जिसकी आपने सेवा की है, ठीक है ना। तो ये ज़रूरी है, मैं आपकी कुछ सेवा कर रहा हूँ तो आपको पता तो होना चाहिए। कभी कभी आज्ञा के बिना भी सेवा करनी पड़ती है, लेकिन वैसे तो सेवा हमेशा आज्ञा से ही होती है कि आपकी इच्छा के अनुसार। कई बार ऐसा भी होता है कि आप संकोच कर रहे हैं और आप अपनी सेवा नहीं कराना चाहते और मैं आपकी सेवा करता हूँ, तो बिना आज्ञा के ही मैं सेवा करता हूँ, ठीक है ना। और कोई, हाँ सुनाई नहीं पड़ा क्या? हाँ, नहीं वो विशेष रूप से भगवान तो सबके हृदय में बैठे हुए हैं, वो समझ रहे हैं कि कैसी भावना है, वो सेवा की भावना से बता रहे हैं। जो सेवक है वो सेवा की भावना से ही बता रहा है कि मैंने ये सेवा की आपकी, तो सेवा की भावना तो भगवान अच्छी तरह समझते हैं। लेकिन सामान्य व्यक्ति भी समझ जाता है कि सेवा की भावना है या दिखाने की भावना है। ये तो बड़ा आसान है समझना किसी बच्चे के भाव को। आप किसी बच्चे को भी देखते हैं तो बच्चा भी आपका भाव समझ लेता है कि आपका प्रेम का भाव है या नफरत का भाव है या गुस्से का भाव है, एक बच्चा भी समझ लेता है, ठीक है ना। और कुछ? अच्छा, तो मैं प्रश्न करूँ, ठीक है। अच्छा, आपका प्रश्न, हाँ देखिए, अगर वरिष्ठ भक्त को सेवा बताते हैं आप प्रतिवत नहीं कर पाते हैं, तो आप उनको बताइए कि क्षमा करें प्रभु, मैं ये नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है ना, मेरे से नहीं हो पाएगा, क्षमा करिए। तो क्षमा मांगना चाहिए, है ना। और आप क्या सेवा कर सकते हैं, उसमें से कितना हिस्सा सेवा कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, फिर आप अपना सुझाव लीजिए, फिर उनसे आज्ञा लीजिए कि आप दूसरी सेवा बताइए। इस तरह से होता है, तरीका यही होता है कि आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, वो पूरी बात जो है आप बताइए और पूछिए। बताना और पूछना ये सब जरूरी होता है। जैसे ध्रुव महाराज को नारद जी ने आदेश दिया था कि तुम अपने घर में जाओ और जो है अपने महल में रहो, और जो कुछ भी अपने पिछले जन्म के कर्म से सुख दुख प्राप्त हों उनको समान भाव से भोगो, इस प्रकार से भगवान की भक्ति करो। ध्रुव जी ने जो है मतलब कहा कि आपने जो बताया मेरे कल्याण के लिए बिल्कुल सही बताया, लेकिन मेरा जो मन है वो बहुत क्या है विचलित होता है, और मैं ऐसी स्थिति में नहीं रह सकता हूँ। अब तो आप मुझे ऐसी आज्ञा दीजिए कि मैं जो है जंगल में ही जाकर भगवान को प्रसन्न करूँ। तब नारद जी ने जब देखी कि ऐसी स्थिति है इस बालक की, तो फिर आदेश दिया कि ठीक है तुम जंगल में जाकर के भगवान की ऐसे तपस्या करो। कैसे विधि से उन्होंने बताया कि कैसे भजन करना है, ठीक है ना। तो अपनी अयोग्यता बता करके क्षमा मांग करके विनम्रता पूर्वक आप जो है वो मना कर सकते हैं सेवा के लिए, ठीक है। इसके लिए क्षमा मांगना, ठीक है। और कोई प्रश्न? धन्यवाद। श्री पाणिहारी की रघति महाभोत्सव की जय जगद्गुरु श्री प्रभुपाल की जय। हरे कृष्ण। अच्छा ठीक है, आखिरी प्रश्न, अभी बैठिए बैठिए, अभी बैठ जाइए। हाँ, आपका प्रश्न क्या है? एकादशी का क्या महत्व है? एकादशी का जो है महत्व यह है कि भगवान को ये प्रसन्न करने वाली तिथि है, भगवान की प्रिय तिथि है ये। तो भगवान ने जो है नियम बनाया है, इसे आपको अन्न नहीं खाना, ठीक है ना। नियम तो बहुत से हैं एकादशी के, लेकिन वो सब नियम पालन नहीं किए जा सकते हैं कलयुग में, हमारा शरीर ऐसा नहीं है। लेकिन कम से कम हमें जो है एकादशी दिन अन्न नहीं खाना है, ठीक है ना। अगले दिन जो समय है पारण का, उस समय आपको पारण भी करना जरूरी है, ठीक है ना। तो ज़्यादा नियम हम नहीं बताते हैं, असली जो नियम है वो हरिनाम का है, क्या हरिनाम करिए, ठीक है। धन्यवाद। हरे कृष्ण।
Yeah.